आगे अगली आयात में यही बताया गया है, यही आज का हमारा सबक है, मुत्तकी होता कैसा है, ताकि हम मुत्तकी बन सके। और पहली जो बात बताई गई, अल्लज़ीना, वो लोग, युमीनूना, ये वो लोग हैं। मुत्तकी कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो युमीनूना ईमान रखते हैं, बिल गैब, गैब पर। ईमान क्या चीज होती है, पहले तो ये बात समझे। ईमान होती है दिल में यकीन, दिल में इंसान मान जाए, जुबान से उसका इकरार करे, और नंबर 3 अपने अमल से उसको साबित करे, अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं इनको, इनके साथ अमल करके उसका सबूत दे कि मेरा इस बात के ऊपर ईमान है। एक मिसाल देती हूँ, आपने वेदर में सुना कि अल्लाह ताला रहम करे कि कल बड़ा तूफान आ रहा है, आपके दिल ने इस बात को मान लिया, आपने जुबान से भी घर में सबको बोला भाई आपको पता है तूफान आ रहा है, यानी आपने बिलीव किया इसको, सिर्फ दिल में नहीं रखा और बैठी नहीं रही, आपने सबको कॉल करके भी बताई आपको पता है तूफान आ रहा है, फिर उसके बाद फिर भी नहीं आप बैठी, फिर आप जल्दी जल्दी गई, भागी भागी ग्रोसरी स्टोर से चीजें लेकर आई और घर में जमा कर, इसको कहते हैं ईमान, हमने ईमान ले आए उसकी बात के ऊपर। ठीक है, एक सिंपल एक टर्म में आपको बता रही हूँ, यानी ईमान क्या चीज होती है कि दिल में भी उस चीज को माना, जुबान से भी उसका इकरार किया, और आपने एक्शन से भी करके दिखाया कि हाँ भाई मैं इसको बात को मानती हूँ, क्योंकि जिस चीज को इंसान दिल से मानना होता है ऐसे हो ही नहीं सकता वो उसके ऊपर एक्शन ही ना करे। अगर आप बैठी रहती और सो जाती जाके, तो इसका मतलब आपके दिल ने मानना नहीं था। जब इंसान का दिल किसी चीज को मान लेता है ना, वो खुद ब खुद उसके ऊपर एक्शन करता है। ये झूठ होता है, नहीं मेरा दिल तो मानता है, हाँ भाई तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, उसके अंदर तो पता है ईमान कूट कूट के भरा हुआ है, चाहे बाहर कुछ भी नहीं नजर आ रहा, कोई जरूरी है दिखाना बाहर, हमने बस दिल में भर के रखा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये ईमान होता ही नहीं है, फिर अपने आप को धोखा देना होता है। आगे बात आएगी उन लोगों की भी जो खुद को धोखा दे रहे हैं। तो ईमान ये चीज होती है, ईमान जो होता है ना वो प्रूफ नहीं मांगता, हम खड़े होके नहीं कहते अच्छा आप तो वेदर ये बता रहे हैं, पहले आप मुझे बताएं कौन सी सैटेलाइट से आपने देखा, मुझे भी पहले दिखाएं कि कहाँ से तूफान आ रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या, पहले मैं देखूंगी, नहीं हम बस मान लेते हैं उसने बता दिया। तो ईमान होता ही ये है, इस ट्रस्ट का नाम, इतमाद का नाम, कि आपने किसी की बात सुनी और उसको मान लिया। अब यहाँ पे क्या ईमान, जब हम अपनी इसमें पढ़ते हैं तो ईमान क्या चीज होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी हमें बताया, हमने बगैर देखे बगैर कोई तहकीक किए सब कुछ मान लिया, हमने हमने ये नहीं कहा अच्छा पहले आप हमें तो दिखाए ना, जिब्राइल अलैहि सलाम आ रहे हैं आपको दे रहे हैं वही तब हम मानेंगे, नहीं। ईमान इसी को तो कहते हैं कि मान गए हम, किस चीज को मानना है, जो सबसे पहले जरूरी है, बिल गैब, गैब के साथ ईमान लाने वाले। गैब का मतलब क्या चीज होती है, गैब उन सब चीजों को कहते हैं जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से नहीं महसूस कर सकते, उनका इदराक नहीं कर सकते, उनके बारे में नहीं जान सकते अपनी 5 सेंसेस से। उसमें कौन कौन आ जाता है, अल्लाह की जात गैब है, ठीक है, हम ठीक है, निशानियां बेशुमार हैं दुनिया के अंदर जो हमें साबित करती हैं कि एक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह को तो नहीं देखा ना, तो निशानियां तो मौजूद हैं मगर वो जात को हमने बगैर देखे मानना, गैब पे ही माने, मगर गैब पे ईमान सिर्फ अल्लाह के, अल्लाह सिर्फ गैब नहीं है, और भी बहुत सी चीजें गैब हैं, मसलन फरिश्ते, वो भी गैब हैं, उनके ऊपर भी ईमान लाओ कि फरिश्ते हैं, फिर और क्या क्या चीजें गैब हैं, जन्नत जहन्नुम गैब है, आपके साथ आखरत में कब्र में क्या होना ये सब गैब है, कब्र के सब हालात गैब ही हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो मानते ही नहीं कब्र, हम तो मानते ही नहीं कब्र के में क्या होना ये सारी चीजें बातें, और भाई जब आपको कुरान खोलते ही आपको कहा गया गैब पे ईमान लेकर आओ, जब हमारे नबी ने हमें बता दिया ये कब्र में ये होना है, यू हैव टू बिलीव दिस, वरना तो आपने गैब का इनकार कर दिया। और कुछ लोग क्या कहते हैं हमें क्या पता वे क्या होता है, किसी ने आके थोड़ा ही बताया, तो इट मीन्स कि आपको ट्रस्ट नहीं है अपने नबी की बात पर, फिर तो ईमान नहीं हुआ, ईमान है ही नहीं। तो ईमान के एक गैब जो हमारे नबी ने बता दिया ना कि ये है ऐसे है, फरिश्ते हैं, और फरिश्तों को चाहे नहीं देखा हम कहते हैं हाँ है, बस उन्होंने बता दिया तो है, और उन्होंने बता दिया कब्र में ये अजाब है, या कब्र में ये इंसान को साथ हाल होता है, या उन्होंने बता दिया हशर में ये होगा, कयामत आएगी, वो कयामत भी तो गैब है, वो कौन सा हमने देखी है जाके, ये सब गैब की चीजें हैं। इनके ऊपर ईमान रखना मुत्तकी के लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इसके ऊपर ईमान रखो। ये बेसिक मुत्तकी है, ये अभी बहुत हाई लेवल का भी नहीं हुआ, ये बेसिक है, ठीक है। ये तो चीजें लाजमी है ही है, क्योंकि जब गैब पे ईमान नहीं होगा, कुरान फिर पढ़ते रह जाओ, क्या वो कहते हैं हम तो अनसीन पे बिलीव नहीं करेंगे, सीइंग इज बिलीविंग, जब हमने कोई चीज देखी नहीं हम तो नहीं मानते, तो फिर आप इससे नहीं फायदा उठा सकते इस कलाम से, बिकॉज यू हैव टू बिलीव। अरे वो कहते हैं हम कैसे बिलीव कर रहे हैं, हम कैसे बिलीव करें जिसको हमने ना कभी देखा है, सबसे ज्यादा यही होता है ना आर्ग्यूमेंट नॉन मुस्लिम का, हम कैसे बिलीव कर लें। देखिए इसके अंदर बात यह है कि बिलीव जो करना देख के है ना, वो तो कोई बिलीव ही नहीं है, वो तो फिरौन ने भी जब डूब रहा था तो उसने भी कह दिया था कि अब मैं मूसा के रब पे ईमान लाया, जब उसने भी गैब देख लिया तो उसने भी कह दिया कयामत के दिन जब सब चीजें सामने आ जाएंगी तो अबू जहल अबू लहब भी बोल पड़ेंगे कि हम अल्लाह पे ईमान लाए, उस वक्त आपके ईमान का क्या फायदा, ईमान तो है ही गैब पे ईमान, कि हमने नहीं देखा फिर भी हम बिलीव करते, इवन हमने रसूलों को नहीं देखा हम फिर भी बिलीव करते हैं कि रसूल आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने जो बात कही वो हक कही, ये इसी बात के तो रिवॉर्ड है आपको दिखा के, मसलन है आप एक स्टूडेंट है, आपको जी एग्जामिनर पेपर देता है साथ ही आपको आंसर भी शीट भी दे देता है, तो आपका इम्तिहान किस बात का है जनाब, किस बात के नंबर आपको मिलने चाहिए, अब हमें दिखा दिया जाए सारा, कयामत में भी जगह खड़ा कर दिया, फरिश्ते भी उतर रहे हैं, अब उसके बाद पूछा जाए आपका ईमान है, तो ये कौन सा ईमान है भाई, ईमान है ही गैब पर ईमान का नाम, ये है आपसे मतलूब, अरे दिस इज योर टेस्ट, दिस इज योर टेस्ट, ये मत कहो कि मुझे देखूंगी तो मैं बिलीव करूंगी, तो दिस इज द टेस्ट कि आप इन इस अकल को इस्तेमाल करते रहे, निशानियों को देख के अल्लाह को पहचान जाओ, और फिर जब अल्लाह को मान लिया और फिर उसके बाद ये मान लिया कि उसके रसूल आए, और फिर जब जो चीज अल्लाह ने बताई वो सब फिर हक है, सबसे बड़ी हस्ती को मान लिया तो जो उसने बताया फिर तो मानना कोई मुश्किल ही नहीं है, फिर तो कयामत भी हक है चाहे अभी नहीं आई, जन्नत जहन्नुम भी हक है, सब हक है, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है गैब पर ईमान, डोंट एस्क फॉर अ प्रूफ, डोंट एस्क जो है ना मैं देखूंगी तो फिर मैं मानूंगी, नो, मेरा गैब पे ईमान है, यही सबसे पहली बात इस कुरान में ईमान की जो आई वो गैब पर ईमान है, ठीक है। मैं बता दिया गैब में कौन कौन सी चीजें आती। अच्छा अब एक और अहम बात है, समझे इस बात को, ये कहना कि हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं, फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, तकदीर पर ईमान लाते हैं, जितने भी ईमानियात हैं हमारी रसूलों पर किताबों पर, ये हम ईमान लाते हैं, ये तो हमें जो है ना नर्सरी क्लास से रटा दिया जाता है, और संडे स्कूल में जाते हैं उनको भी बच्चों को याद करा दिया जाता है, तो अब आप हमें ये क्वेश्चन पूछें तो हम तो फौरन लिख के इसके टेस्टों में आ जाता है, उसके हमें नंबर मिल जाएंगे, रात को उठा के बिठा दें पूछ दें ईमानियात कौन कौन सी हैं तो हम बता देंगे। लेकिन एक बात बताइए, जब ये प्रैक्टिकल फॉर्म में आता है, असल बात तो तब है कि ईमान बिल गैब है या नहीं, असल बात तब है, प्रैक्टिकल फॉर्म में मसलन कैसे, अल्लाह अकबर, यहीं पे हमारा पता चलता है हमारा ईमान बिल गैब कितनी हद तक है भी कि सिर्फ रटी रटाई बातें हैं। जब ये आता है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, हमें कहा जाता है इन्नल्लाह मास्साबिरीन, सबर वालों के साथ अल्लाह है, हमें कहा जाता है सबर वालों के लिए बे हिसाब अजर है, मुझे बताएं तब हमें कुछ यकीन आता है गैब पे, उन्हें मुझे तो अजर नहीं नजर आ रहा, वो अजर आपको मिल रहा है नहीं लेकिन मेरे सामने तो नहीं है, तब इंसान के दिल तभी सुकून में आएगा जब उसको ये गैब पर ईमान होगा कि हाँ मेरा अजर लिखा हुआ है कहीं सेव हो रहा है। जब इंसान नेकी करता है तो नेकी में मुशक्कत होती है ना, नेकी में मेहनत करनी पड़ती है ना, नेकी पर क्या चीज है जो उसको मजबूत रखेगी, ये ईमान बिल गैब कि ये मैं नेकी कर रही हूं ना, इसका अजर मुझे मेरा अल्लाह देगा। तब इंसान है जो वो चल सकता है उस नेकी के रास्ते पर। अगर उसका गैब पर ईमान ही नहीं है तो फिर वो तो नेकी करना बड़ा मुश्किल है, फिर मुझे क्या मिलेगा इससे? फिर ये सवाल आता है ना कि मैं क्यों करूं, मैं इतनी मेहनत करूं किसके लिए करूं? तो ये गैब पर ईमान इतना जरूरी है कि इंसान नेकी कर ही नहीं सकता जब तक उसका गैब पर ईमान ना हो, जब तक उसको ये बात अच्छी तरह नहीं पता कि हाँ मेरे लिए ये अजर का बाइस है। इसी तरह कोई बुराई है, अब इंसान का जब गैब पर ईमान है ना कि ये फरिश्ते मेरे साथ बैठे हुए हैं जो लिख रहे हैं सारी मेरी बातों को, तो फिर वो एकदम डर जाएगा कि ओ मेरे साथ फरिश्ते हैं। ये प्रैक्टिकली जब आता है ना गैब पर ईमान, तब पता चलता है कि है भी या नहीं। और जब इंसान बेपरवाह होता है, क्योंकि गैब है, नजर नहीं आता, सेंसेस से महसूस नहीं होता, तब पता चलता है हाँ कितना है ये ईमान, मुझे ये यकीन है फरिश्ते हैं मेरे साथ। कोई लोग हैं हराम पैसा कमा के बहुत आगे निकल गए और आप अभी तक वैसे ही बैठे हैं। जब आपका ईमान बिल गैब होगा ना कि रिस्क मेरे अल्लाह के हाथ में और उसने जितना मेरे लिए लिखा है मुझे मिल के रहना, ये है गैब पर ईमान, तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। अदरवाइज तो आप हलकान ही रहेंगे, देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हम तो अभी तक यही। ये भी गैब पर ईमान है कि जब इंसान अल्लाह के लिए वक्त लगाता है तो उसको पता है कि ये मेरा वक्त, ये मेरी मेहनत बहुत ज्यादा मेरे लिए वहां पे अजर व सवाब के पहाड़ बन रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला इन चीजों से खुश होता है, तो अल्लाह यकीनन ये जो मेरा काम है ये अल्लाह को पसंद है ना, तो मैं ये काम करूं। अब वही इंसान गैब पर ईमान नहीं होगा तो कहेगा मैं इसके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट करूं, या फिर मैं नौकरी करता हूं कोई पैसे चार कमाता हूं। पैसे नजर आती हैं, डिग्रियां नजर आती हैं, इसलिए हम पैसों के लिए मेहनत करते हैं, नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें डिग्री नजर आती है, गैब नजर नहीं आ रहा। जिसको ट्रस्ट होगा, जिसका ब्लाइंड फेथ होगा, वही फिर मेहनत करेगा इस रास्ते में, बाकी कोई नहीं करेगा। कहेगा मिलेगा हमें क्या इससे? अब आप यहां पे बैठे हैं आपको क्या मिलेगा? एक सर्टिफिकेट, चलो सर्टिफिकेट फिर भी एक देखने की चीज है, लेकिन अदरवाइज क्या मिलेगा? कोई पैसे मिल रहे हैं, कोई कुछ मिल रहा है, कुछ भी। जिसका गैब पर ईमान होगा फिर वही मेहनत करेगा इस रास्ते में भी। इसी तरह आप देखें आज हर तरफ इस्लाम को ज्यादा को बहुत फ्लरिश ऐसे करते हुए बड़ी इज्जतें नहीं मिल रही लोगों को, कितनी मुसलमानों के ऊपर कितने खराब हालात हैं इस वक्त, मजाक भी उड़ाया जाता है, जिल्लत भी दी जाती है मुसलमानों को। इस वक्त ये ईमान रखना कि यही मेरा दीन है जो सच्चा दीन है, ये भी गैब पर ईमान है। उस वक्त ये ईमान रखना, रसूलों को बड़ा सताया गया तो मेरा भी अजर इसमें बढ़ेगा अगर मुझे भी सताया जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, ये गैब पर ईमान है। क्योंकि ये सारी चीजें तो गैब में हो रही है ना, आपका काउंटर वहां चल रहा है, आपकी एडिशन वहां हो रही है, आपके अकाउंट में वहां इजाफा हो रहा है। तो ये जब ईमान होता है तभी इंसान आगे इस रास्ते पर चल पाता है, तभी इंसान, आप कहें इतना अजर आपको मिलेगा, आप इतना काम करते हैं इतना इतना इसका अजर है, तो हम कहें कहाँ है अजर, किधर है, मुझे ले जाके दिखाओ अजर पहले बताओ। फिर गैब पर ईमान रखना जरूरी है, वरना तो इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते जो आगे आ रहे हैं, जो लिस्ट आगे दी हुई है ना, कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये जो लोग कहते हैं गैब पर ईमान, हमें पहले दिखाएं दिखाएं, आप खुद सोचें, कई चीजें इस दुनिया के अंदर है जो आप गैब है वो, लेकिन आप मानते हैं उनको। अब ठीक है, वो साइंस अब कहती है कि जो भी टेंजिबल चीज है बस उसके ऊपर बिलीव करो, बाकी जो नजर नहीं आती, जो अपने हवास से नहीं जान सकते, तो आप बिलीव ही ना करें, और उसमें खुदा की जात भी आ जाती है। वो कहते हैं नहीं, हम जब जान ही नहीं सकते ना, हम किसी उसे देख सकते हैं, तो फिर हम क्यों बिलीव करें? हालांकि क्या आपको कहा जाए, आप कहें मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, आपको कहा जाए कहाँ है वो मोहब्बत, पहले मुझे दिखाओ ना, दिखाओ मुझे, कैसे कोई थर्मामीटर है जिससे मैं नापूं, कोई आला है जिससे मुझे पता चले? नहीं, आप कहते बस है, वो कहाँ है, कहाँ, वो तो गैब ही है ना, ये हम मान लेते हैं। फिर दुनिया में बहुत सारी चीजें हम मानते हैं जो गैब है। ठीक है, कई आलों से, वो कहते नहीं वो तो हम आलों से तो मेजर करते थे, बुखार नजर नहीं आता, चलो आले से तो पता चल जाता, अल्लाह की जात कहां से पता चलेगी, तो तुम्हें ये निशानियां नहीं नजर आ रही। तो बात तो यही है कि फिर इन इन्हीं को देखकर फिर गैब पर ईमान लाना कि ऐसा है, तभी फिर फायदा हो सकता है इस कुरान से आगे की हिदायत मिले, और यहीं पे अगर इंसान स्लिप कर जाए तो आगे फिर उसको हिदायत तो नहीं मिल सकती। पढ़ लेंगे हम, बहुत सारे प्रोफेसर वगैरह पढ़ते हैं इसी कुरान को पढ़ पढ़ के, आगे लेक्चर्स भी देते हैं, लोगों को भटकाने के लिए भी लोग पढ़ते हैं इस कुरान को कि हम इसमें से शोशे निकालें ताकि लोगों को बदजन करें इस्लाम से, तो हिदायत थोड़ी मिल जाती है उनको। तो गैब पर ईमान पहले लाएं। वयुकीमून अस्सला, और वो कायम करते हैं नमाज को। नमाज को कायम करना क्या होता है, यहाँ पे युसल्लूना नहीं कहा गया, वो पढ़ते हैं नमाज। आप देखें कुराने पाक में कहीं पे भी सल्लू नहीं कहा गया, नमाज पढ़ो, हमेशा कहा गया इकामते सलात का। इकामते सलात क्या होती है, यानी कायम करना नमाज को। कायम करने में क्या है, शुरू से एंड तक जितनी चीजें नमाज की हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। इसमें आपकी तहारत से लेकर, वक्त की पाबंदी से लेकर, आपका जो नमाज के जो अरकान है उनको सही अदा करने से लेकर, खुशू से लेकर, सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। युकीमुन अस्सला में, अरे इंसान की नमाज जो है, नमाज के जरिए से ही उसका कनेक्शन है ना अल्लाह ताला के साथ। नमाज का पहला हुक्म जो, यानी फिजिकली जो परफॉर्म करने का, वो नमाज का आया। तो वुजू भी सही करो, वुजू से वुजू अच्छा वाला वुजू करो, वक्त का भी ख्याल रखो, रुकू सज्दे भी पूरे करो, तहारत भी आपकी कपड़ों की भी होनी चाहिए, तिलावत भी सही तरीके से करो, हर एक रुकन को ठहर ठहर के भी करो, तवज्जो भी रखो नमाज के अंदर, ये सारा कुछ इसमें है। और नमाज वो इबादत है, वो इबादत है जो अल्लाह ताला ने जमीन पे नहीं उतारी, पता है ना आपको, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुला के नमाज तोहफे के तौर पे दिए। हमें तो तोहफा नहीं लगती, हमें तो बोझ लगती है, क्योंकि हम नमाज में अल्लाह से मुलाकात थोड़ी करने जाते हैं, अल्लाह से बातें थोड़ी करने जाते हैं, हम तो नमाज में बस ठुंगे मारने जाते हैं। ये नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। जो भी कोई मुश्किल होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पे खड़े हो जाते थे। तो नमाज को इस तरह कि हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, इस तरह अदा किया जाए, ये बातें हो रही हैं, इसके लिए इंसान क्या कर सकता है कि मुख्तलिफ पोर्शंस कुरान करीम के याद करें, एक ही चीजें ना हमेशा पढ़े। उससे क्या होगा कि आप जब डिफरेंट पोर्शंस पढ़ेंगे तो आपकी तवज्जो रहेगी, दिमाग भटकेगा नहीं। उसके तर्जुमे को याद करें, तर्जुमा याद करने से भी आपका दिमाग फोकस्ड रहता है। तो नमाज में खड़े होने से पहले थोड़ा सा जहन को तैयार कर लें कि मैं अल्लाह के सामने खड़े होने लगी। देखिए आज बहुत सारे लोग नमाज छोड़ चुके हैं, यानी कोई पढ़ते हैं तो तीन पढ़ ली, किसी ने चार पढ़ ली, फजर की तो अक्सर ही लोगों की गायब होती है। उस वक्त जिस वक्त परिंदे तक अल्लाह की तस्बीह कर रहे होते हैं, उस वक्त कितनी बदनसीबी है कि इंसान सोता रह जाए, जानवर तक उस वक्त तस्बीह करते हैं, और जो पांच पढ़ भी लेते हैं वो भी कैसे मारे बांधे के पढ़ते हैं कि नमाज कजा आ रही है, कोई परवाह नहीं है। तो ये नमाज तो वो है रुकन जो किसी हाल में माफ नहीं है, किसी हाल में नहीं है, सिवाय हैज की हालत में औरत होती तो उसके लिए माफी है। अदरवाइज देखें बिस्तर पे भी है ना, बीमार भी पड़े हुए हैं, सकत उठने की भी नहीं, तब भी नमाज माफ नहीं है। तो जो बीमारी में भी माफ ना हो, जबकि आपको पता है रोजा बीमारी में माफ हो जाता है, यानी आप फिदिया दे दें। हज और जकात भी फर्ज है किसी शराइत के साथ, नमाज का तो ऐसा नहीं है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। और कितने हमारे लोग हैं नमाज छोड़ चुके, तो नमाज के ऊपर अपनी तवज्जो करें। फिर अगली चीज तीसरी, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और उस में से, ये मिन तबीज का है, यानी बाज यानी सारा का सारा नहीं देने को कहा जा रहा, उसमें से जो रजकना हमने रिस्क दिया उनको, युनफिकून वो खर्च करते हैं। यानी तीसरी चीज क्या आई कि खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, दो अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह ताला ने इतनी दफा कुरान करीम में आप देखेंगे इस सूरत में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की इतनी ताकीद फरमाई है कि गिविंग बन जाओ, देने वाले बन जाओ, अपने हाथ से दो लोगों को। और यहां तक एक जगह फरमाया कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज देता है, इसको कर्ज कहा, हालांकि दिया अल्लाह ने रजक ना, हमने ही रिस्क दिया है उनको, उसमें से वो खर्च करते हैं। अल्लाह ने फिर बता दिया हमें कि ये जो तुम्हारे पास है ये तुम्हारा नहीं है, तुम उसको कहीं और से नहीं लेकर आए, अल्लाह ने दिया है। जब हमें पता हो कि ये जो मेरे पास चीज है ये मेरी नहीं, किसी ने दी है, और वो ही जिसकी चीज है, मतलब आपने मेरे पास अमानत रखा है, आप फोन करके कहती है देखिए जो मैंने आपको पैसे दिए ना उनमें से इतने पैसे आप फलां को दे दें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए क्या? मैं नहीं देती आप, मैं बस मेरे घर में पड़े, मैंने नहीं दे रही, ऐसे तो नहीं आप कहते। आप कहते हैं भाई उसकी चीज है तो उसने कही है तो ठीक है मैं दे देती। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब हम समझते ही नहीं कि अल्लाह ने हमें दिया हुआ ना, हम समझते मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया, मैं क्यों दू? जब हमारे ये रवैया होता है ना फिर देने में भी मुश्किल होती है। लेकिन जब हमें ये पता है ना अल्लाह ने दिया है, उसी का तो ये है, वो ही कह रहा है कि मेरे दिए में से दे दो तो मुझे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन बात फिर वही है ना गैब पर ईमान की, जिसका गैब पर ईमान होगा वो ही फिर दे सकता है, और जिसका गैब पर ईमान नहीं वो कहता है ये मेरे पैसे मुझसे चले जाएंगे। जिसका गैब पर ईमान है उसके लिए तो ऐसे ही है ना, अल्लाह ताला फरमाता है ना कि जो देता है मुझे मेरे रास्ते में देता है, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी अता फरमाता है और आखिरत में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया कि सदका करने से माल कम नहीं होता, ये मैं कसम खा के कहता हूँ कि घटेगा नहीं तुम्हारा माल, दुनिया में भी अल्लाह उसको कॉम्पेंसेट करेगा कई गुना ज्यादा, 10 दुनिया 70 आखिरत का फॉर्मूला याद कर ले, और 70 से ज्यादा भी अल्लाह कर सकता है, बेहिसाब भी दे सकता है डिपेंडिंग ऑन इंटेंशन। एक खजूर को खुद पहाड़ के बराबर भी बना सकता है। तो समझ लें जैसे हम जाते हैं बैंक में, हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, तो क्या हम उनसे कहते हैं पहले हमें दिखाएं कहाँ पे आप मेरे पैसे डाल रहे हैं और मुझे मिलेंगे भी या नहीं? नहीं, हम इनके ऊपर कितना भरोसा करते हैं, हालांकि बैंक तो बैंकरप्ट भी हो जाते हैं, बैंक तो खत्म भी हो जाते हैं गए लोगों के पैसे, फिर भी हम कितना भरोसा करते हैं, अपनी सारी जमा पूंजी ले जाके उनके पास रख देते हैं, अपने लॉकर वहां पे रखते हैं, वहां पे सारी अपनी कीमती चीजें उनके पास रखाते हैं। हाँ, हमें कभी खटका भी नहीं होता, बस मेरी सेफ है ना चीज, मैंने वहां रख दी। लेकिन अल्लाह के पास उसके अकाउंट में जमा कराते हुए हमें लगता है कि हमारे पैसे चले जाएंगे, आए घट जाएंगे। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह पे इतना भी हमें भरोसा नहीं जितना एक बैंक वाले पे भरोसा होता है। आपने जिसको दिए तो आपने, वो आपसे चला नहीं गया, वो आपने अकाउंट में जमा करा दिया, वो वाला अकाउंट जो अल्लाह के पास है, और अल्लाह का वादा है कि मैं दूंगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। प्रॉब्लम क्या है फिर? अल्लाह के वादे पे यकीन नहीं, क्योंकि गैब का यकीन है ना, ये तो ये है यकीन गैब का। बेस इज ईमान बिल गैब, दिस इज द बेस, इसके ऊपर आपकी इमारत खड़ी होगी। बेस में ही प्रॉब्लम है तो आगे क्या होगा फिर? तो जब आपको जिस दिन भरोसा आ गया अल्लाह के वादों पे, अल्लाह की बातों पे, अल्लाह की दीवी खुशखबरियों पे, या उसके अजाबों पे, उसकी जन्नत जहन्नुम पे, आखरत के दिन, जिस दिन इन चीजों के ऊपर आगे आ रहा है ना ईमान बिल आखरत की भी बात, भरोसा आ गया, बहुत सी चीजें हमारी सही हो जाएंगी। और हमें अपने हाथ से जाता हुआ नजर आता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या करती थी, जिस वक्त कुछ देती थी अल्लाह के रास्ते में तो खुशबू लगा के देती थी, कहती थी, वो पूछते क्यों देती हैं ऐसे, कहती थी अल्लाह को दे रही हूँ ना इसलिए खुशबू लगा के दे रही हूँ। वो ये नहीं देखती थी ये तो फकीर है इसको दे रही, ये लो पकड़ो और जान छोड़ो, ऐसे करके देते हैं ना हम, तो वो कहती ये अल्लाह को दे रही हूँ इसलिए ऐसे दे रही हूँ। तो वो इसको कभी ये ना समझे कि चला गया, इसको ये समझे मैंने बैंक में जमा करा दिया। वो कौन से बैंक का नाम क्या है? अल्लाह का बैंक, ठीक है ना, वहां से मिलेगा, अल्लाह अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। ठीक, अच्छा। दूसरा एक बहुत अहम पॉइंट इसमें, रज़क ना हो। रिस्क हम समझते हैं अपनी डिक्शनरी के मुताबिक, अपनी उर्दू बोलचाल के मुताबिक, रिस्क मीन्स माल, सिर्फ पैसे देने को का यहां पे कहा गया, खर्च करते हैं। हालांकि रिस्क जो है वो जो भी आपको खैर और भलाई और नेमतें मिली हुई हैं वो सब रिस्क हैं, सब रिस्क हैं। रिस्क सिर्फ माल नहीं है, माल इज पार्ट ऑफ रिस्क, लेकिन माल सिर्फ रिस्क नहीं कहलाता, रिस्क में सब चीजें हैं। रिस्क के अंदर आपकी जवानी भी आपका रिस्क है, आपकी सेहत भी आपका रिस्क है, आपका घर बार भी आपका रिस्क है, आपकी सवारी आपका रिस्क है, इल्म आपके पास रिस्क है, आपकी सलाहियतें, कोई स्किल है आपके पास वो आपका रिस्क है। हो सकता है किसी के पास माल भी ना हो लेकिन उसके पास बड़ी अच्छी स्किल्स है, कोई नॉलेज है उसके पास, वो अल्लाह के रास्ते में दे सकता। आपके पास कंप्यूटर स्किल्स हैं, आप उसके जरिए अल्लाह के दीन की, अब वो ना यूनिफिक खून खर्च करते हैं, किधर खर्च करते हैं, बाजार में शॉपिंग करते हैं, नहीं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात हो रही है, यानी अल्लाह के दीन की नशर इशात के लिए, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए। आपको बस सिर्फ ड्राइविंग ही आती है और कुछ भी नहीं आता, और आपके पास एक गाड़ी, तो आप उसके जरिए किस तरह से अल्लाह के बंदों के लिए खिदमत कर सकती हैं, कैसे इसको खर्च कर सकती हैं अल्लाह के रास्ते में। हम तो हर चीज में आजकल इतने मटेरियलिस्टिक हो गए, फौरन हमारा क्या होता है, और फिर मुझे क्या मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे। भाई कभी पैसों से निकल भी आओ, यहाँ पे कहा गया मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, अल्लाह के रास्ते में देना, अल्लाह देगा ना अजर। पर बात फिर रहिंदा एंड वही बात आ गई ना, गैब पर ईमान है कि नहीं, कि अल्लाह देगा ना अजर, मुफ्त तो नहीं मैं कर रही। अगर मेरे पास कंप्यूटर स्किल्स है, मैं उसके जरिए कोई हेल्प कर रही हूँ किसी की दीन सीखने में, पढ़ने में, ये जितने लोग काम कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने एडमिन हैं दिन रात काम में लगे हुए हैं, क्या मिल रहा है इनको? अगर ईमान बिल गैब है तो हाँ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। कोई प्रोग्रामर, कोई कहीं कोई भी वर्कर एक घंटे के कितने पैसे लेता होगा, लेकिन अल्लाह के पास उससे कहीं बड़ा अजर है। और वो एक एक घंटा नहीं देखता, वो तो एक एक सेकेंड भी मेरा है ना उसको भी गिन रहा है, जितने मेरा माइंड इसमें खप रहा है, मेरी जितनी एनर्जी इसके अंदर लग रही है, वो सब इसका रिवॉर्ड है। हालांकि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तो कुछ भी ना दे तो तब भी हमें उसके रास्ते में लगाना चाहिए, क्यों? उसकी चीज है, उसके रास्ते में ना लगे तो कब कहां लगे, ये जान दी हुई उसी की है। वो शेर है ना कि ये जान, मुझे भूल गया, ज़हन से निकल गया, याद आता तो बताती हूँ। ये जान दी हुई उसी की है, हक तो ये कि हक अदा ना हुआ। हाँ याद आ गया कि ये जान भी अगर मैंने दी दी तो किसकी दी हुई है, ये जान उसी की दी हुई, हक तो फिर भी अदा नहीं होता, लेकिन वो कितना करीम रब है कि वो उसके ऊपर भी अता करता है, कहता मैं रिवॉर्ड दूंगा तुम, और हम इतने थोड़े दिले हैं कि हमसे दिया नहीं जाता, क्यों दूं, मेरा टाइम, कई लोगों के पास टाइम है वो टाइम ही नहीं निकाल को मांगते, टाइम तब दूंगी कि मुझे कोई पैसे मिलेंगे। हमारे लिए हर चीज वही बात है ना कि दुनिया जो है वो दिल में है कि बाहर है, कश्ती में आपकी पानी है या आपकी कश्ती पानी में चल रही है, असल तो ये बात है कि अब आप किस तरह से देखते हो, अब मुझे मिलेगा क्या इसका भाई। अब जब तक कोई सामने चीज पैसों की सूरत में ना मिले हमें तो लगता है हमें कुछ मिला ही नहीं। तो देखो ये सब अल्लाह के वादों पे यकीन करने से आएगा, कि फिर दोगे भी लगाओ अपने आप को, हम में से सब देखें कि मेरे पास क्या है, किसी के पास हिम्मत ताकत है या कोई जिस्मानी चीज, कोई ऐसी आपके पास कोई फिजिकल चीज है या कोई रूहानी की चीज है या कोई कोई और ऐसे काम हुनर, कोई कोई चीज तो आपके पास होगी, क्या चीज है जो आप दे सकते हैं। देखिए पढ़ के आगे जाना बहुत आसान है, हमारे इस कोर्स का मकसद ये नहीं कि हम पढ़ के बस आगे जाते हैं, हमने देखना है कि इन आयतों को हम लें कैसे अपने लिए। मैं तो आपको पढ़ा दूं मुत्तकी की ये क्वालिटीज हैं, चलो आप भी बस्ता उठाएं और घर चले गए, किताबें बंद करके बैठ गए, नहीं सोचें भी तो सही ना, मेरे पास क्या है जो मैं अल्लाह तेरे लिए दे सकती हूँ, क्या है मेरे पास। हर एक के पास कुछ ना कुछ है, और देखें सुभान अल्लाह इंटरेस्टिंग थिंग, रज़क ना हम जो है ना वो पास्ट टेंस है, माजी में है, रज़क ना हम जो दिया हमने तुमको, यानी कि जो देंगे हम तुमको, हम क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं हाँ जब ना मेरे इतने पैसे आएंगे, बोनस आएगा, कमेटी निकलेगी,
या ये होगा वो होगा, फिर मैं उसमें से दूंगी। ये नहीं, अगर दूंगी कि तो बात की बात है, जब वो आएंगे तो देखा जाएगा, जो इस वक्त तुम्हारे पास है, जो अल्लाह ने ऑलरेडी हर एक को कुछ ना कुछ दिया है, उसमें से दो ना तुम। अब आप कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका, हाँ पैसा हो सकता है हर एक के पास नहीं हो, लेकिन और कुछ ना कुछ जरूर है, पहचाने क्या चीज है और उसको किस तरह आप काम में लाएंगी अल्लाह के रास्ते के लिए, और उसके लिए टाइम निकालें। फिर वो आपकी कोई, आपके बोलने की ताकत हो सकती है कि आपके पास कोई बोलने की सलाहियत है, कोई लिखने की सलाहियत हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है, आप पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है, आप वो कोई हुनर ही आता है, उसमें किसी तरह लगा दें। आप, आपको मैंने कहा ना, आपको ड्राइविंग ही आती है, अपनी गाड़ी में राइड दे के किसी को ले जाए कहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर करें, जो कहें आप कि अल्लाह ये तेरे लिए है, ये मैंने तेरे रास्ते में किया और मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से सिला, ये जरूर होना चाहिए। तो वो जो मुत्तकी होते हैं वो तो भाई ऐसे होते हैं। ठीक है, समझ आ गई इतनी बातें। तो अब हमने आगे की प्लानिंग नहीं सोचनी कि जब फलां पैसे आएंगे, अब हमने ये देखना जो अभी तक मेरे पास है। सब अपना अपना कुछ ना कुछ इस वीक में सोचे कि कौन सी चीज मैंने लगानी है। ठीक है, किसी को बताने की नहीं जरूरत है, लेकिन आपने खुद करना है। किसी को फोन पे कोई बात समझा दे, देखा अब आपने, अच्छा चलो कुछ भी नहीं आपके पास, सूरह फातिहा भी आपने सीख ली, ये किसी और तक पहुंचा दीजिए, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। आपको जो इल्म मिला वो आपने आगे दे दिया, किसी को बुला लें अपनी जुबान से कुरान की तरफ, ये भी एक है चीज। आप अपनी कोई सर्विस दे दें कि मुझे ये चीज आती है, मेरे से ये काम ले लीजिए, मैं अपने वक्त को अल्लाह के रास्ते में देना चाहती हूँ, किसी तरह तो करें। ये मोमिन जो मुत्तकी होता है ना, वो देने वाला होता है, और सोचें जो देने वाला हो वो तो फिर कभी लूट का सूट नहीं कर सकता, मैं इससे भी छीन लूँ उसका भी हक मार लूँ, इसका मतलब वो गिविंग है, मुत्तकी जो है वो गिविंग है। ठीक है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, और वो लोग ईमान लाते हैं साथ उसके जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ क्या नाजिल किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुरान भी नाजिल हुआ और हदीस भी। याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सिर्फ कुरान ही नाजिल हुआ, कुरान तो वही मतलू है, यानी वही वो है जो तिलावत की जाती है, एक वही की किस्म गैर मतलू भी है। ये जो सारी आप अहदीस पढ़ते हैं, मसलन आप बुखारी उठा लें, ये उठा लें, कितना नॉलेज है इसमें, समंदर है नॉलेज के। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पहले से आते थे, जन्नत में ऐसे है, जहन्नम में ऐसे है, और फरिश्ते ने आके ये कहा, और जो बातें और सारी, ये नबुवत से पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बातें नहीं कही थी, इससे क्या पता चला, ये वही की सूरत में आप पर उतरती थी ना, आपको किसी ने आके बताई तो आपको पता चली ना, खुद से तो नहीं पता चली थी। तो ये भी वही की सूरत है, लेकिन ये वही गैर मतलू है, पढ़ी नहीं जाती, तिलावत नहीं की जाती कुरान की तरह, तो उसके ऊपर भी ईमान रखना जरूरी है। यहीं पे आके खत्म हो जाता है अकीदा, रद्द हो जाता है उनका, उनके अकीदे का, जो कहते हैं कि हदीस को हम नहीं मानते, जो कहते हैं ना मुनकिरीन हदीस, जो आज एक नया ही फितना शुरू हो गया और यूथ के लिए बहुत वो तबाहियां मचा रहे हैं, कि यंग बच्चों को इस तरफ लगा रहे हैं कि ये तो हदीस तो बाद में लिखी गई, हम तो मानते ही। अगर आप हदीस को नहीं मानते तो आपको पता है जो कुरान है ना, वो भी किसकी जुबान से आपको पहुंचा, उतरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे, आप वो किसकी जुबान से मिला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से मिला था ना, तो ये वही मतलू है ना, तो फिर ये कह दो हम इसको भी नहीं मानते, कहते नहीं हम तो सिर्फ कुरान को मानते, हदीस को नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर। वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, और वो जो नाजिल किया गया आपसे पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नाजिल हुआ, क्या नाजिल हुआ, यानी वो जो इल्हामी किताबें, जो सुहुफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल हुए, तौरात, इंजील, ज़बूर और सुहुफ इब्राहिम, जो भी अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया उसको भी हम मानते हैं। मानने का मतलब ये नहीं कि आज से आप तौरात लेके बैठ जाए, अब आप, मैं तौरात का कोर्स शुरू कर देती, नहीं, मानने का मतलब ये کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے اتری ہیں. اب تو دیکھیں اس میں اتنی تحریف ہو چکی ہے, اتنی چینجز ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, ایک دفعہ میں ایک کوئی بک اسٹڈی کر رہی تھی جس میں جو کمپیریٹو ریلیجن ٹائپ کی تھی بک, تو اس میں کچھ جو ان کی کتابوں کے بھی کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی تھی, اور میں زبان پر بھی نہیں لا سکتی کہ کتنی گھٹیا چیزیں تھیں جو کہ پیغمبروں کے بارے میں انہوں نے لکھی ہوئی تھی. اتنی غلیظ چیزیں تھیں کہ انسان کسی برے سے برے انسان کو جو آج کے دور میں ہوگا اس کے لیے بھی نہیں وہ چیزیں سوچ سکتا جو انہوں نے پیغمبروں کے بارے میں لکھی. انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے تو آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ پیغمبروں کی بات کر رہے ہیں, یہ کس بات کس کی بات کر, کہ جن کو نہ کوئی محرم رشتوں کا کوئی خیال تھا نہ کوئی کسی چیز کا خیال تھا تو یہ کرتے تھے, اتنی بری بری باتیں, تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوں گی. تو یہ کتابیں جو اوریجنلی اتری تھیں وہ اللہ کی طرف سے تھیں, لیکن آج مثال کے طور پہ ہمیں بالکل ایگزیکٹ وہ مل جائے جو کہ اللہ کی طرف سے اتری تھی, تب بھی وہ ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہ اب قرآن آ چکا ہے جو لیٹسٹ ہے, اور وہ کتابیں اپنے اپنے زمانے کے لیے صرف تھیں. اگر اوریجنل آ بھی جائے, بل تو ہے نہیں, لیکن ہمارا ایمان کس چیز کے اوپر ہے. اب یہ یہاں پہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کی ٹیچنگز, ان کے اندر جو باتیں ہیں ان کے اوپر ایمان لے کے, بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے اتری تھی. یعنی بتانے کا مقصد یہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے ایک پہلی دفعہ کوئی نہیں اللہ کی طرف سے کتاب اتری, بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ کی طرف سے تعلیمات آئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے قرآن کی بات آئی, اس کے بعد یہ پچھلی کی بات آئی. حالانکہ زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پچھلی کی پہلے بات آنی چاہیے کہ ہم پچھلی کتابوں پہ بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہے نا, ایسے ہونا چاہیے تھا نا, لیکن ہوا کیا کہ پہلے قرآن اور پھر اس کے بعد ان کتابوں کی بات. تو وجہ کیا ہے اس کی, وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں, اور اس کی بیس کے اوپر ہم ان کتابوں کو دیکھیں گے کہ ان میں کون سی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے اور کون سی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے, انہوں نے خود ایڈ کی. یہ قرآن کو کہا کہ یہ مہیمن ہے, نگہبان ہے ان کتابوں کا بھی, یعنی ان کتابوں میں جو صحیح چیزیں ہیں ان کا بتاتا ہے کہ یہ صحیح. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, ایمان بھی نہیں یقین. یقین جو ہوتا ہے نا وہ ایمان سے بھی آگے کا لیول ہے. یقین میں کیا ہے کہ یعنی ذرا سا بھی کوئی شائبہ بھی نہیں ہے, ذرا سی بھی کوئی ذرا ایک رمق بھی نہیں ہے کسی چیز کی کہ کوئی بات اس کے اندر پتہ نہیں ایسا ہے بھی یا نہیں. ایبسولوٹ کنوکشن جس کو کہتے ہیں نا وہ یقین ہوتا ہے, کہ میرا دل جس کو کہتے ہیں ٹھک چکا ہے اس کے اوپر, کہ جس کو انسان کبھی بھولاتا نہیں ہے, وہ چیز ہے یقین. ٹھیک ہے, تو وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور کیسا یقین, ایسا نہیں کہ اپنے من مانے کانسیپٹ ہیں. من مانے کانسیپٹ تو مشرکین مکہ کے بھی تھے, یہود کے بھی تھے, ان سب کے ہیں کہ ہاں ایک آئے گا ڈے آف ججمنٹ, لیکن ان کے اپنے اپنے کانسیپٹ تھے. یہود کا آپ پڑھیں گے آگے کہ ہمیں تو بس آگ میں ڈالا ہی نہیں جائے گا کبھی بھی, ہم تو بس چند دن اگر گئے بھی تو وہ آگ میں رہیں گے, ورنہ تو ہم جنتی ہی ہیں. عیسائیوں کا بھی یہی تھا اور ان کا بھی یہ کہتے تھے, ہم تو صرف جنت کے اندر یہودی یا عیسائی جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا. یعنی اپنے اپنے کانسیپٹ بنائے گا, اور اس دن تو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے ہمیں چھڑا لیں گے, وہی سولی پہ چڑھ گئے, انہوں نے ہمارے گناہ اپنے سر لے لیے. اس قسم کے جو سارے کانسیپٹس ہیں وہ صحیح نہیں. آخرت کا کانسیپٹ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اس کے مطابق یقین, یعنی آخرت کا صحیح عقیدہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. من مانے خود ہی نہیں بنائے ہوئے آخرت کے, جیسا میرا دل چاہے گا ویسے میں آخرت کا ایک کانسیپٹ بنا لوں گی, وہ نہیں, یقین. اور جب یقین آتا ہے نا تو پھر یہ وہ عقیدہ ہے جس سے زندگیاں بدل جاتی ہیں, زندگی بدل جاتی ٹوٹلی. اور جب صحابہ کے اندر بھی یہ یقین آیا تھا نا تو وہ تو کچھ اور ہی بن گئے تھے, وہ تو وہ تھے ہی نہیں جو پہلے تھے. کہاں وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے, کہاں وہ صحابہ کرام جن سے اللہ راضی ہو گیا. اور آخرت میں نا موت سے لے کر حشر نشر میزان پل صراط جنت جہنم سب چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر، قبر اور سب چیزیں ہیں اس کے اندر، یہ سب آخرت کے ہی احوال ہیں، آخرت شروع ہو گئی اس کی جو اس کو موت آ گئی. تو یقینون والا جو ہے نا یقین رکھنے والا، ایک ہوتا ہے زن، زن کا جو الٹ ہے نا وہ یقین ہے، گمان اس کا الٹ یقین، کسی چیز کو ایسے مان لینا جیسے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. جیسے حضرت علی فرماتے تھے نا کہ اگر میں جنت جہنم کو دیکھ بھی لوں تو میرے ایمان میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا. یعنی دنیا میں ہی ان کا ایمان ایسا تھا جیسے انہوں نے دیکھی ہو سامنے، جیسے وہ سامنے ہیں ان کے، ان کو جیسے نظر آتی ہے، ایسا ان کا ایمان تھا. ایسے نہیں کہ ویک سا ایمان، کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے کہ آخرت ہے، کبھی کبھی جب کوئی مرتا ہے تو پھر بڑا یاد آتی ہے، پھر اس کے بعد پھر بھول ہی جاتی ہے. نہیں، یقین، یقین تھا. تو پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا وہ مزے سے، تو اس کو کہاں کچھ چیز ایسی یاد آئی. اور یہ بھی آتا ہے بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے اور رو پڑے، لیکن بیوی نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. اب مجھے نہیں پتا مجھے نجات ملے گی کہ نہیں ملے گی، مجھے نہیں پتا. اب دیکھیں آپ، یہ وہی باتیں کر سکتا ہے نا جس کو یقین ہو، جس کو نظر، نظر سے مطلب یہ نہیں ہے وہ کوئی دیکھ کے آئے گا، نظر سے مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے وہ ریالٹی ہو، ایک لیونگ ریالٹی ہو، ایک ویک سا کانسیپٹ نہ ہو کہ جیسے چھوٹے ہوتے سے باتیں سنی ہوئی ہیں. ہاں ہاں ہمارے ماں باپ بھی کہتے تھے ہاں قیامت ہے، چلو آئے گی تو دیکھی جائے گی، چلو کون سی ایسی بات ہے. نہیں، جب یہ یقین بن جاتا ہے نا، پھر انسان کی زندگی کے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، پہننے اوڑھنے، خوشیاں غم، ہر چیز کے اندر نا پھر اس کو اپنی آخرت یاد آتی ہے، پھر اس کو وہ دن یاد آتا ہے، بھائی اس سے میرا کیا بنے گا، یہ کام کیا تو پھر میرا کیا بنے گا، کیا ہوگا میرے ساتھ پتہ نہیں. اس کی سوچ وہ رہتا دنیا کے اندر ہے، فزیکلی دنیا میں رہتا ہے، اس کا مائنڈ پتہ ہے کہاں ہوتا ہے، آخرت میں. اس کی کیلکولیشن سارا دن آخرت کے مطابق ہو رہی تھی، کیلکولیشن. آپ جیسے یہاں پہ سودے کرتے ہیں نا، اتنا دوں گی تو اتنا ملے گا، اس میں اتنا پروفٹ ہوگا، وہ یہاں پہ لگا دیا تو گھاٹا ہو جائے گا، بزنس مین ایسے کرتے ہیں نا. تو وہ بھی اللہ کے ساتھ سودا کرنے والا ہے، وہ سارا دن اس کی یہ کیلکولیشن ہو رہی ہے، کیا کروں گی تو کیا ملے گا وہاں پہ، اچھا یہ کر لیا تو وہاں نقصان ہو جائے گا. وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہتا ہے دنیا میں. ہاں جی، ہم بتائیں کہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، کہ یہ یقین کرنے والوں کا یہ ہوتا ہے، یقین، یا بھولا رہتا ہے آخرت کا کانسیپٹ، کہیں کہیں یاد آتا ہے. کیوں صحابہ اتنا روتے تھے، کیوں یاد کر کر کے ان کو جب آیتیں ایسی پڑھتے تھے جو آخرت کی ہوتی تھی، تو کیوں ان کو ایسے رونا آتا تھا؟ رونا اسی لیے آتا تھا، ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ آگے میرے آنے والے ہیں، تو ہمارا بنے گا کیا. حضرت ابو ہریرہ تھے، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، رونے لگے، لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں، کیا دنیا چھوڑنے کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، بلکہ میرا سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس قلیل زیادہ رہا ہے، بہت تھوڑا سامان ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. میں نے اس ٹیلے پہ شام کی ہے جس سے آگے پتہ نہیں جنت ہے یا جہنم ہے، مجھے نہیں پتا میری منزل کون سی ہے. ایسے ان کو یقین ہوتا تھا، ایسے ان کو تھا کہ کیا سفر ہے، کتنا لمبا وہ سفر ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کتنا لمبا سفر ہے آگے. اس کی منزلیں پتہ ہے آپ کو کہ کیا کیا منزلیں؟ اچھا، ایک سیریز ہم نے کی تھی رمضان میں، کی تھی میدان معاشر میں میری کہانی. آپ میں جو نیو اسٹوڈینٹس ہیں وہ ویب سائٹ پہ جائیں گے، آڈیو لیکچرز میں دیکھیے گا، میدان معاشر میں میری کہانی، وہ سیریز سنیے گا آہستہ آہستہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ تھے، لیکن کوئی ایسی خوش فہمیاں نہیں ہیں کہ ہاں ہم تو جنت میں ہی جانے والے ہیں، ہمیں کیا پرواہ، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں،
حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس وقت ان کی وفات کا وقت تھا تو حضرت حذیفہ کو بلایا، فرمایا میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام تمہیں بتائے تھے ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے، کیونکہ منافقین کے نام صرف حضرت حذیفہ کو بتاتے ہیں اور کسی کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، قسم دے کے پوچھ رہے ہیں. اور یہ حضرت عمر ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور پھر اس کے بعد موت سے پہلے اپنا سر زمین میں رکھ دیا، بیٹے نے اٹھا کے سر گود میں رکھ لیا، کہتے میرا سر چھوڑ دو، سر کو زمین میں رکھ دو، اور اپنا سر زمین میں لوٹ پوٹ کرنے لگے اور فرمانے لگے یا عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. ایسا یقین تھا ان کو کہ آخرت ہے، اس کے بعد سوال جواب ہے، مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اس کی عدالت ہے، میزان ہے، میری نیکیوں اور بدیاں تلنی ہیں. اسی لیے تو وہ ابو ہریرہ فرما رہے ہیں میرے پاس زیادہ رہا بہت تھوڑا ہے، بہت قلیل ہے. ایسا یقین تھا ان کو، ہمارے یقین کہاں چلے گئے؟ کیوں نہیں ہمیں یہ سوچ آتی؟ کیا ایوری ڈے بھی سوچ آتی ہے؟ اس سب سے بڑی ریالٹی کی سب سے بڑی حقیقت ہے یہ. اس حقیقت یہ وہ نہیں ہے جو کبھی ٹل سکے، یہ وہ حقیقت ہے. کوئی بھی اور چیز ٹل سکتی ہے، آپ کا امتحان ہے ٹل سکتا ہے، کسی کی شادی ہے ٹل سکتی ہے، کوئی اور دعوت رکھی بھی ٹل سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہو نہیں ہو، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جس نے ہو کے ہی رہنا ہے. پھر بھی اس کا کتنا خیال آتا ہے، ہر دن آتا ہے کہ نہیں آتا؟ فرمایا جن کے پاس یہ چیزیں ہیں اولئک علی ہدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ اپنے رب کی طرف سے. تو جس کو یہ ہر وقت یہ اللہ کی عدالت کی سوچ رہتی ہو، وہ اپنے آپ کو خود یہاں رہتا یہاں ہے لیکن اپنے آپ کو کھڑا ہوا وہاں پہ محسوس کرتا ہے، جو اپنی سوچ ہی سوچ میں وہاں پہنچا رہتا ہے، یہ ہدایت پہ نہیں ہوں گے تو اور کون ہوں گے؟ اولئک علی ہدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہیں، اور من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یعنی ہدایت صرف اللہ دینے والا. ایک میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک ہدایت ہے کیا وہ جو راستہ دکھا دینا، ایک ہدایت ہے ساتھ بیٹھ جانا چلا دینا، یعنی اللہ تعالیٰ ہے پھر جو ان کو چلانے والا ہے، اللہ پھر ان کو پکڑ کے چلا دیتا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جب یہ کام کرتے ہیں نا پھر ہی اللہ ان کو وہ ہدایت دیتا ہے، اور یہی لوگ ہیں پھر کہ وہ مفلح ہیں، فلاح پالنے والے ہیں. فلاح، فلاح کہتے ہیں کسان کو. کسان کیا کرتا ہے؟ بڑی محنت کرتا ہے پھر اس کو فصل ملتی ہے. اس لفظ سے ہی بتا دیا گیا کہ محنت بڑی کرنی پڑے، یہ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، اس راستے کو عبور کرنا نا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، پھر جا کے کہیں جنت ملتی ہے. تو جیسے کسان سارا سال محنت کرتا ہے تو اینڈ میں جا کے اس کو فصل ملتی ہے نا، اسی طرح یہ کامیابی وہ ہے جو بڑی انتھک محنت کے بعد یہ ملے گی. یہ آرام کر کر کے اور بس مزے کر کر کے اور بس دنیا میں ہی پڑ کے اور کشتی کے اندر پانی آیا ہوا ہے اور ہوش ہی نہیں ہے کچھ، اس سے نہیں جنت ملتی. یہ کامیابی پانے کے لیے جیسے وہ کسان ہے محنت کرتا ہے اور پھر پاتا ہے، اسی طرح یہ متقی اس کو پہنچتے ہیں اس کامیابی کو، کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں. اگر تمہیں بھی متقی بننا ہے تو تمہیں بھی محنت کرنی ہوگی، تب منزل پا سکو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے وہ راضی ہو گیا اور جن کو وہ ہاتھ پکڑ کے اور راستے پر چلا دے، صراط مستقیم پر چلا دے اور منزل تک پہنچا دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.